तो नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स जैसे एंटर करते हैं हम, पहला टॉपिक क्या है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो मतलब क्या क्या होता है क्या। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो वो होता है जो मास पे डिपेंड नहीं करता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है वो मास पे डिपेंड करता है। मतलब इसको कैसे जानते हैं हम लोग कि अगर कोई भी चीज़ है तो उसको बाय पार्ट करने से, उसको तोड़ देने से क्या उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे कोई चेंजेस आ रहे हैं, नहीं तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर आ रहे हैं तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये जनरल फॉर्म हुआ। और सेकंड पॉइंट होता है एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी गिव्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये दो पॉइंट याद रखना, सारे क्वेश्चंस होते हैं इससे। अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स रिजल्ट्स या मतलब कुछ हैं डेटा जो हमें स्ट्राइक नहीं करते हैं, नहीं करते हैं ठीक है। तो जो भी चीज़ इक्विलिब्रियम पे डिफाइंड होता है वो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ऐसा वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी हमेशा इक्विलिब्रियम पे डिफाइंड होता है तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। सारे टाइप के एनर्जी जो होते हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं, जितने भी टाइप के हमारे पास एनर्जीज हैं। अब किसी भी चीज़ पर मोल या पर ग्राम लग गया है तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाता है। हीट वर्क, वो हीट और वर्क जो है वो ना इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होते हैं ना उसको पहले। हीट को हम ऐसे केमिस्ट्री में ऐसा डिफाइन करते हैं कि चेंज इन हीट बोल के कोई नाम का चीज़ नहीं होता है, वो हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट होता है। इनिशियल इनिशियल इनिशियली जितना था टेम्परे इनिशियल जितना हीट था फाइनल भी उतना ही होगा। वो हीट जो जनरेट हुआ, हीट या वर्क, वो ड्यूरिंग द प्रोसेस वो आया और ख़त्म हो गया, कहाँ भाग गया क्या पता, कोई टेंशन नहीं है बात ठीक है। तो यहाँ पे अपन फिर ख़त्म हो जाता है यहाँ पे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में, इतना ही था। तो नेक्स्ट टॉपिक है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक। आइसोथर्मल में डेल्टा टी जीरो, टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर जीरो। आइसोबैरिक पे बैरिक, बैरोमीटर, बैरोमीटर से बैरिक बैरिक याद करना। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो। आइसोकोरिक तो आइसोकोरिक डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा टी जीरो हो चुका, डेल्टा वी जीरो हो चुका, तो बचा क्या, आइसोकोरिक, तो वो डेल्टा वी जीरो कर देना उसमें, कुछ तो करना ही है। अब एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो, चेंज इन हीट जीरो होता है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो, हीट को हम लोग क्यू बोलते हैं ठीक है, डन। और इन केमिस्ट्री डी क्यू जो होता है उसको हम लोग क्यू मान सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ठीक है, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड करता है, मतलब उसको वो उसको फाइनल या इनिशियल से फ़र्क उतना नहीं पड़ता है, बट वो पाथ पे भी डिपेंड करता है। फाइनल और इनिशियल से फ़र्क पड़ता ही है बट वो पाथ पे भी डिपेंड करता है। बट जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, उसको बस इनिशियल इनिशियल और फाइनल में ही बस डिपेंड करते हैं। तो पाथ फंक्शन कौन कौन से होते हैं, हीट वर्क और हीट कैपेसिटी। होमवर्क मतलब एच डब्ल्यू, एच डब्ल्यू में क्या, एच एच फॉर हीट, एच हीट कैपेसिटी और वो डब्ल्यू, इस तीनों को छोड़ के बाकी सब चीज़ स्टेट फंक्शन होते हैं। पाथ फंक्शन में बस तीन चीज़ होते हैं, होमवर्क, होमवर्क एच फॉर हीट, हीट कैपेसिटी और डब्ल्यू फॉर वर्क, बस इन तीन चीज़ को छोड़ के बाकी सब वर्क मतलब स्टेट फंक्शन होते हैं। तो ठीक है डन। तो वर्क क्या होता है, यहाँ पे स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में एक ये बात बता दूँ कि आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट स्टेट फंक्शन होता है और एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क स्टेट फंक्शन होता है। वाह, ये एक पॉइंट था बस, इसको डीप एनालिसिस करेंगे बाद में ठीक है। चलो अब वर्क आ जाते हैं। वर्क क्या कहता है, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस होता है। फिर एम डॉट डी एस को उसको जब आगे बढ़ाएंगे तब हमको वर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डी वी मिलेगा। ये केमिस्ट्री में नेगेटिव साइन देना मत भूलना, क्योंकि फिजिक्स में पॉजिटिव होता है, केमिस्ट्री में नेगेटिव होता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, डन ठीक है। तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, और वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम या फिर फ्री एक्सपेंशन का वर्ड कुछ बोला जाए तो हमें प्री एक्सटर्नल एस जीरो होता है, तो वर्क डन कोई कुछ नहीं होगा, वर्क डन जीरो होगा। तो सिस्टम पे वर्क करेगा, सिस्टम अगर वर्क करेगा तो नेगेटिव, अगर सिस्टम पे वर्क होगा तो पॉजिटिव, अगर सिस्टम वैक्यूम के अगेंस्ट वर्क करेगा तो कोई मतलब वैक्यूम के अगेंस्ट क्या करेगा, फ्री एक्सपेंशन करेगा तो कोई वर्क नहीं आएगा, वर्क इज इक्वल टू जीरो आएगा। तो यहाँ पे एक यूनिट का 1 ATM लीटर 101 जूल होता है, 1 bar 100 जूल होता है। ठीक है, अभी इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी आइडियल गैसेस का हमेशा टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर का ही ओनली फंक्शन होता है इंटरनल एनर्जी। तो उसी लिए टेम्परेचर जहाँ पे भी कांस्टेंट देखो, जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे होगे तब अगर कहीं पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट बोल दिया या आइसोथर्मल प्रोसेस बोल दिया तो हम इंटरनल एनर्जी DU को जीरो मानेंगे, क्योंकि ये बस टेम्परेचर का फंक्शन होता है आइडियल गैसेस के लिए। आइडियल गैसेस बस टेम्परेचर के फंक्शन में होते हैं, और बाकी मतलब अगर टेम्परेचर बाकी कोई भी चीज़ चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है या प्रेशर चेंज हो रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं होता। अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट दे दिया तो इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा। ठीक है, डन। इसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। क्या होता है, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q+W, मतलब हम कितना हीट दिए या फिर कितना वर्क किए दोनों का, क्योंकि एक चीज एक सिस्टम को हम एनर्जी देंगे तो कैसे देंगे, या तो हम उसको हीट दे सकते हैं, हीट कैसे दे सकते हैं जब अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो, और अगर हम उससे वर्क कर रहे हैं तब भी उस पर एनर्जी जा रहा है। तो हम डिफाइन किए कि जो इंटरनल एनर्जी होता है वो Q+W होता है। तो DW मतलब इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q-P external into V होता है। ठीक है, Q Q-P external into dV होता है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे तो इंटरनल एनर्जी डायरेक्ट Q के बराबर आ जाएगा। तो अब डिफरेंट प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होता है। तो पहला आइसोथर्मल प्रोसेस में, क्योंकि यह टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है तो हम इंटरनल DU इज इक्वल टू जीरो होता है। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है तो DU इज इक्वल टू Q Q+W, और DU इज इक्वल टू Q-P external into dV आइसोबैरिक प्रोसेस में जहाँ पे प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में जहाँ वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है तो जो वर्क वाला टर्म आएगा वो जीरो हो जाएगा, तो इसीलिए DU इज इक्वल टू DQ या फिर Q को, दोनों एक ही चीज़ है। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट। तो अब एडियाबेटिक प्रोसेस में DQ इज इक्वल टू जीरो होता है, तो क्योंकि यहाँ पे Q वाला टर्म जीरो हो जा रहा है तो हम DU इज इक्वल टू W मान सकते हैं, मतलब इंटरनल एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है। और एडियाबेटिक प्रोसेस में और आइसोकोरिक प्रोसेस में जहाँ पे वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है वहाँ पे इंटरनल एनर्जी हीट के बराबर होता है, क्यू के बराबर होता है। ठीक है, और साइक्लिक प्रोसेस में एज ये स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है तो ये साइक्लिक प्रोसेस में जीरो होता है। ठीक है, सर, डन। एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम ये क्या होता है कि हमने एंथैल्पी क्यों डिफाइन किया। एंथैल्पी इसलिए डिफाइन किया कि हम जनरली जो भी रिएक्शन कराते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे कराते हैं, तो हमने एक टर्म में डिफाइन कर दिया कि एंथैल्पी। तो एंथैल्पी क्या होता है कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज एंथैल्पी चेंज। ठीक है, जो कांस्टेंट प्रेशर पे जो एंथैल्पी चेंज, जो हीट आता है उसी को हम एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी बोलते हैं। तो DH इज इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट क्या होता है, हम जानते हैं कि DU इज इक्वल टू Q+W होता है, तो Q इज इक्वल टू DU-W हो जाएगा। तो इस यहाँ से हम डेल्टा डेल्टा H इज इक्वल टू DU+W लिख सकते हैं, DU-W लिख सकते हैं। तो डेल्टा H इज इक्वल टू DU+PdV आराम से हम लिख सकते हैं इस चीज़ को। तो अब इस इक्वेशन को हम कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो पहला, अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है तो बस टेम्परेचर में फ़र्क आ रहा होगा, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू DU+NRT, हम PV की जगह NRT यूज़ कर रहे हैं, NR∆T, ∆T मतलब चेंज इन टेम्परेचर दे देंगे। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू DU+ΔNgRT। डेल्टा एन जी क्या है, डेल्टा एन जी टोटल मोल ऑफ गैसेस ओनली, खाली हमें गैस के मोल्स काउंट करने हैं प्रोडक्ट के, माइनस टोटल मोल ऑफ गैसेस ऑफ रिएक्टेंट। वाह, ये डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी क्या होता है, टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गैसेस ओनली और माइनस टोटल मोल ऑफ गैसेस इन रिएक्टेंट। ये होता है डेल्टा एन जी। तो अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो चेंज इन एंथैल्पी होगा, इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। और अगर कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है तो चेंज इन एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी प्लस आर टी इंटू डेल्टा टी होता है। ठीक है, यहाँ पे डन। और फॉर सॉलिड और लिक्विड के लिए डेल्टा डेल्टा एच जो होता है वो डेल्टा यू होता है, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता तो डी वी कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो डेल्टा एच जो चेंज इन एंथैल्पी होता है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर आ जाता है। ठीक है सर, डन। तो यहाँ से हम एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि डी एच चेंज इन एंथैल्पी माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी, यहाँ से हम कर सकते हैं। तो हमें एक ये कह सकता है कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका कंडीशन कब होगा? जब डेल्टा एन जी जीरो होगा। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को हम डेल्टा एच कहते हैं और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम डेल्टा यू कहते हैं। फिर से सुनना, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर प्रेशर व डेल्टा एच कहते हैं। डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर में डेल्टा एच, कांस्टेंट वॉल्यूम में डेल्टा यू, चेंज इन एंथैल्पी, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होता है तो वो हीट के बराबर आ जाता है सीधा सीधा, क्योंकि डी यू जो होता है वो हीट के बराबर आ जाता है अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होता, क्योंकि वर्क वाला टर्म जीरो हो जा रहा होता। तो यहीं पे हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डी एच को सिंबलाइज करता है और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी यू को सिंबलाइज करता है। ये क्वेश्चन में ऐसा ही टर्म यूज़ करते हैं ये लोग, डेल्टा एच डेल्टा यू नहीं लिखते हैं, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम में लिख देते हैं। तो ये जब इन ये दोनों कब इक्वल होंगे? जब डेल्टा एन जी जीरो का कोई मोल का चेंजेस नहीं आएगा तब डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है? कि हीट रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज हीट कैपेसिटी। कोई भी सब्सटेंस को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जितना हीट खर्च करते हैं हम उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो इसको क्या देखा से डिफाइन किया गया, क्यू इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू सी, हम हीट कैपेसिटी को सी बोलते हैं, तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई डी टी, वाह क्यू बाई डी टी। और स्पेसिफिक हीट बोल देंगे अगर पर ग्राम हमको इंक्रीज कितना पर यूनिट ग्राम भी ऐड कर देंगे उसमें 1 डिग्री टेम्परेचर और पर यूनिट ग्राम, तो हम उसको सी एस लिख के सी सी एस लिखते हैं और उसको एस भी कहते हैं क्योंकि स्पेसिफिक हीट, तो उसको एस कहते हैं। तो एस इज इक्वल टू क्यू बाय एम इंटू डेल्टा टी, यहाँ से फैराडे इक्वेशन क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी कहीं भी चिपका दो आ जाता है आंसर फिजिक्स में। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू क्यू बाय एम डेल्टा टी होता है। अब मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? डेल्टा मतलब सी वी होता है, इसको हम सी वी कहते हैं। तो डेल्टा यू, क्योंकि एट कांस्टेंट वॉल्यूम में जो हीट होता है वो हम उसको डेल्टा यू कहते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का बात कर रहा है। तो डेल्टा एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो एन सी वी डी टी होता है। और कांस्टेंट प्रेशर में जब हम हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं तो हीट किसको रिप्रेजेंट करता है? एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच को। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डी टी, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डी टी, डन। ठीक है, ये हो गया। तो हीट मीन सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर जो होता है ये वर्क को सिम्बोलाइज करता है। वर्क डन बाय द 1 मोल ऑफ गैसेस टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ दैट कंटेनर बाय पुशिंग। ये जो अगर ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोलेगा बट जो वर्क एन सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर होता है, ये बात याद रखना। और ये कॉन्स्टेंट फॉर कॉन्स्टेंट प्रेशर वर्क डन बाय द 1 मोल गैस इन, ये जो मतलब सी पी माइनस सी वी जब हम करते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है? कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ गैस टू इंक्रीज द वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करेगा? बाय पुशिंग द वॉल, मतलब कंटेनर का साइज बढ़ा जाता है क्योंकि वहाँ पे हम प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं तो वॉल्यूम चेंज होगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम चेंज होना बनता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा। तो वॉल्यूम कैसे चेंज हो सकता है? क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम चेंज करने के लिए हम कंटेनर का वॉल को एक्सपेंड कर देंगे क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रखना है ना, नहीं तो अगर वॉल्यूम भी वही रह जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो अपने को प्रेशर कांस्टेंट रखना है। तो ये बात होता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आता है कि वर्क डन बाय 2 मोल ऑफ गैस टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 2 आर होगा। ऐसा थ्री मतलब 1 मोल के लिए आर होता है, 2 मोल के लिए 2 आर होगा, एज सिंपल एज इट इज़। तो इसके बाद आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? कुछ नहीं होता है। कहने को लिए होता है कि कोई मॉलिक्यूल कितने डायमेंशन में मूव कर सकता है, यही डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो इसमें कोई केमिस्ट्री की जरूरत नहीं पड़ता है, बस याद रखना होता है कि कौन से टाइम में क्या, मतलब CP और CV का वैल्यू निकालने के लिए काम आ जाता है। तो हम कैसे निकालेंगे CP और CV का वैल्यू? जब मॉलिक्यूल मोनो मोनो एटॉमिक होगा तब उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा, जब डाया एटॉमिक होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा, और जब ट्राया एटॉमिक होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 होगा। अगर वो नॉन लीनियर है, अगर लीनियर है तो 6 होगा, मतलब ट्राई एटॉमिक में। ट्राई एटॉमिक में अभी लीनियर और नॉन लीनियर का बात हो जाता है। तो अगर लीनियर हुआ तो 7, नॉन लीनियर हुआ तो 6। मैंने गलत बोल दिया था। लीनियर हुआ तो 7, नॉन लीनियर हुआ तो 6, ठीक है, डन। और यहाँ पे रिलेशनशिप आता है कि CV इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाय 2 × R होता है। वाह, CV इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम f/2 × R। CV इज इक्वल टू f/2 × R। अब CV मिल गया तो CP मिल जाएगा आराम से। CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, तो वहाँ से हमको CP भी मिल जाएगा। तो अगर CV फाइंड करना है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाय 2 × R कर दो, और डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब ये ऑड मल्टीपल में बढ़ता रहता है। मोनो एटॉमिक में 3, डाई एटॉमिक में 5, ट्राई एटॉमिक में अगर नॉन लीनियर हुआ तो 6, और लीनियर हुआ तो 7। इसको याद कर लेना बस, और बाकी सब निकाल लेना, और कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस। वर्क डन कितना कितना कौन कौन से प्रोसेस में कितना कितना कैसे कैसे होता है, तो इसको हम एक टेबल से समझते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन जो होता है, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस भी दो तरीके से हो सकते हैं, अगर एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या होता है, अगर किसी काम को हम इन्फाइनाइटली स्टेप में कर रहे हैं, मतलब धीरे 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 धीरे, मतलब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमेशा मेंटेन रहे, ताकि मतलब जो भी हम यू वो बोथ डायरेक्शन में मूव कर सकता है पिस्टन। मतलब अगर हम पिस्टन के हिसाब से बात करें तो पिस्टन अचानक से उठा देना तो वो नॉन रिवर्सिबल, और धीरे 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 उठाना वो रिवर्सिबल। तो वो रिवर्सिबल में इन्फाइनाइट स्टेप होता है रिवर्सिबल में, और इरिवर्सिबल में फाइनाइट स्टेप में प्रोसेस होता है। बस इतना याद करना, और कुछ ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वर्ड आइसोथर्मल प्रोसेस में हम इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो हम सीधा सीधा वर्क डन इज इक्वल टू पी माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू dV लिख सकते हैं। और dU इज इक्वल टू, क्योंकि आइसोथर्मल बोल रहे हैं तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो dU इज इक्वल टू 0। dH इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो भी तो हीट ही होता है, तो वो भी 0। और क्योंकि हीट नहीं होता है, क्योंकि डेल्टा एच जो होता है वो भी टेम्परेचर पे बस डिपेंड करता है। वो डेल्टा एच और डेल्टा यू ये दोनों टेम्परेचर के ही फंक्शन होते हैं बस, और कुछ किसी के फंक्शन नहीं होते। तो अगर टेम्परेचर कहीं भी पढ़ लिया कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब DU और DH हमेशा 0, आँख बंद करके 0 मार के आना बस, तो डन, ठीक है। तो वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, मतलब किसी भी चीज़ में हम चार चीज़ फाइंड करते हैं। क्या फाइंड क्या क्या फाइंड करते हैं? W, DU, DH और Q फाइंड करते हैं। ये चार चीज़ फाइंड करते हैं सारे सारे प्रोसेस में, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक। तो पहला, और हर चीज़ में दो 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 सेक्शन देखते हैं हम, एक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो आइसोथर्मल में रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन जो होता है वो पी एक्स माइनस और पी एक्सटर्नल इंटू dV होता है, DU 0 होता है, DH 0 होता है, Q इज इक्वल टू W होता है, क्योंकि DU 0 हो जाता है तो Q इज इक्वल टू माइनस W आ जाता है। वाह, तो Q इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू dV आ जाता है, क्योंकि Q इज इक्वल टू माइनस W होता है। ये इरिवर्सिबल का हुआ। रिवर्सिबल में क्या होता है, क्योंकि अब चीज़ों को हम धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, तो एक्सटर्नल प्रेशर धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है। एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हो रहा है तो हम अब सीधा सीधा इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ला सकते उस चीज़ को, टी प्रेशर को। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट करना पड़ेगा प्रेशर को किसी और के टर्म में लिखा के। तो हम एट द एंड हमको जो रिजल्ट मिलता है वो वर्क डन इज इक्वल टू nRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल, नहीं V इनिशियल बाय V फाइनल, सॉरी। तो वर्क डन क्या होता है, nRT ln, ln क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्यों 2.303 आता है, 2.303 मल्टीप्लाई कर देंगे तो लॉग आ जाएगा। तो 2.303 nRT log V इनिशियल बाय V फाइनल, ऐसा याद कर सकते हो, ठीक है। और nRT की जगह हम PV भी यूज़ कर सकते हैं, और क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर PV 2.303 PV log P फाइनल पी फाइनल बाय पी इनिशियल होता है। तो बड़ा जो भी तुम चेंज कर सकते हो, कैसे भी एनआरटी की जगह पीवी लिख सकते हो, पीवी की जगह एनआरटी लिख सकते हो, दोनों तो इक्वली होते हैं, ठीक है। तो डीयू डीएच तो हमेशा ही जीरो प्रेशर का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कह दिया है, और जो हीट होगा यहाँ पे -W होगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में। एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन जो होता है वो चेंज इन प्रेशर इंटू वॉल्यूम होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ चेंज हो रहे रहते हैं। प्रेशर भी कांस्टेंट नहीं है क्या, वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं होता है। अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों का मल्टीप्लाई करके चेंज कर देंगे, तो डेल्टा पी वी बोलते हैं हम इसको डायरेक्ट, डेल्टा पी वी बाय गामा -1। गामा क्या है, पॉइजन्स रेशियो, वो होता है सी पी माइनस सी वी, सी पी माइनस सी वी वो होता है पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो सी पी माइ सी पी डिवाइडेड बाय सी वी होता है, उसको हम गामा कहते हैं। तो डब्ल्यू एडियाबेटिक प्रोसेस में इरिवर्सिबल के केस में डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा पी वी डिवाइडेड बाय गामा -1। डेल्टा यू डब्ल्यू होता है क्योंकि यहाँ पे हीट कांस्टेंट है, तो डी यू इज इक्वल टू डब्ल्यू 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 हो जाता है। तो यहाँ पे भी डी यू डब्ल्यू के बराबर होता है। चेंज इन एंथैल्पी वो एन सी पी डी टी, जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया एन सी पी डी टी चिपका देना, कोई कंडीशन में नहीं हो रहा तो डेल्टा एच एन सी पी डी टी सीधा सीधा, कोई क्योंकि वो बेसिक फॉर्मूला है, वो कहीं भी एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। और क्यू यहाँ पे जीरो होगा क्योंकि चेंज इन एंथैल्पी जीरो है, क्योंकि चेंज इन एंथैल्पी जीरो है उसमें क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर हमको इरिवर्सिबल प्रोसेस में टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना पड़ जाए किसी क्वेश्चन में, तो हम कैसे करेंगे? तो टी फाइन तो इसका इसका बड़ा सा क्वेश्चन आता है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल डिवाइडेड बाई गामा -1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी ए पी ए पी फाइनल, जो कि पी एक्सटर्नल होता है, तो माइनस ऑफ पी फाइनल इंटू टी फाइनल डिवाइडेड बाय टी पी इनिशियल माइनस टी टी इनिशियल डिवाइडेड बाय टी पी फाइनल, क्योंकि यहाँ पे इसको मतलब कि यूनिट डायमेंशन ज़्यादा यूज करना तो यूज़ आएगा अच्छे से, क्योंकि पी हमेशा नीचे आएगा, क्योंकि बाहर पी मल्टीप्लाई में है तो नीचे पी आएगा, आने से ही तो कट पाएगा, क्योंकि उधर जो बैठा है वो यो बस टेम्परेचर पे ही डिपेंड, टेम्परेचर का, क्योंकि प्रेशर का उसका डायमेंशन नहीं है, तो यहाँ पे प्रेशर कटना होगा, तो इसलिए प्रेशर हमेशा नीचे आएगा, टेम्परेचर ऊपर आएगा यूनिट डायमेंशन के हिसाब से, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय गामा -1 माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा पी भी पी पी टी डिवाइडेड बाई पी टी डिवाइडेड बाई पी सीधा सीधा करना, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई गामा -1 इज इक्वल टू पी इंटू पी एक्सटर्नल जो होता है इंटू डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई प्रेशर। इसको पूरा का पूरा एज इट इज करो, वाह इससे क्वेश्चन आ जाते हैं बाई चांस, बट आते हैं। तो यहाँ पे वर्क क्या होगा, वर्क तो वही हो जाता है मतलब। तो इसके बाद रिवर्सिबल प्रोसेस में आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू जीरो होता है, तो डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू हो जाता है। तो यहाँ पे डी यू हमको स्टेट फंक्शन मिल जाता है, तो चाहे वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, डी यू कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वर्क पहले पाथ फंक्शन था, क्योंकि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क होता है वो स्टेट फंक्शन हो जाता है। तो चाहे वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो या रिवर्सिबल प्रोसेस, दोनों ही केस में वर्क डन सेम आएगा, क्या आएगा, एन आर टी एन एन आर डेल्टा टी बाय गामा -1, या पी वी डेल्टा पी वी बाय गामा -1, सेम ही चीज़, मतलब वही दोनों सेम ही चीज़ है। और डेल्टा यू डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू आ जाएगा इस केस में। और इस केस में अगर रिवर्सिबल की केस में हम कैसे फाइनल टेम्परेचर फाइनल इनिशियल प्रेस फाइंड करें, तो उसके लिए फिर याद करना पड़ेगा तुमको पी इंटू वी टू द पावर गामा कॉन्स्टेंट होता है इज इक्वल टू, तो पी वन बाय पी फाइव पी इनिशियल बाय पी फाइनल इज इक्वल टू वी फाइनल बाय वी इनिशियल होल्ड ओवर गामा, ऐसा याद करना है, इतना बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन, ठीक है करना है अब जो भी है। तो पी इंटू वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू के होता है, टी इंटू वी टू द पावर गामा -1 के होता है, पी टू द पावर, ये मतलब ये तीनों अलग अलग ही क्वेश्चन हैं, तीनों कोई भी केस को जरूरत पड़ सकता है। पहला वाला क्या है, पी इंटू गामा पी इंटू वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। फिर आ जाता है टेम्परेचर इंटू वॉल्यूम टू द पावर गामा -1, पहले के ऊपर गामा था तो अब गामा -1 हो जाएगा, तो टी इंटू वी गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो थर्ड वाला इक्वेशन आता है कि पी इज इक्वल टू 1 माइनस गामा इंटू टी टू द ओवर गामा, तो पी टू द ओवर 1 माइनस गामा इंटू टी टू द ओवर 1 टी टू द ओवर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। भाई साहब क्या ही फॉर्मूला। अब नेक्स्ट आता है आइसोथर्मल, आइसोकोरिक और आइसो आइसोबेरिक, ये दोनों छोटे 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 हैं, आराम से हो जाएगा। तो आइसोकोरिक प्रेशर में जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस आइसोकोरिक इरिवर्सिबल प्रोसेस में वाल्व डन जीरो होता है, DU कहीं भी चिपका दो, NCPDT DU Q के बराबर आ जाएगा क्योंकि W जीरो है। तो DU इज इक्वल टू Q इंटू Q इज इक्वल टू Q, Q क्या होता है, Q कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे क्या आता है, NCVDT, तो वही चिपका दो, DU इज इक्वल टू NCVDT, डेल्टा एच इज इक्वल, डेल्टा एच कहीं कुछ कंडीशन नहीं है तो डेल्टा NCPDT लटका दो, कहीं भी कुछ चिपका देना है। तो DU इज इक्वल टू NCVDT, DH इज इक्वल टू NCPDT, Q इज इक्वल टू NCVDT, बस यही करते रहो जीवन में, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें क्या ऐसा, इसमें क्या इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल, ये तो दोनों ठीक ही है, इसमें क्या है, वो दोनों दोनों ही सेम चीज़ आएंगे, उसमें कोई 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 डिफरेंस नहीं आएगा, एक भी चीज़ पे डिफरेंस नहीं आता इरिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में, इस केस में आइसोकोरिक में। आइसोबैरिक में भी वही होता है, आइसोकोरिक में भी दोनों ही सेम होते हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों ही सेम होता है। तो इसमें क्या होता है, डब वाल्व डन होता है माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, DU इज इक्वल टू NCPDT, डेल्टा एच इज इक्वल टू NCPDT, डेल्टा डेल्टा यू भी NCPDT होता है, डेल्टा एच भी NCPDT होता है, क्यू इज इक्वल टू NCVDT होता है, ख़त्म। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि कॉम्पेयर कॉम्पेयर ऑफ वर्क डन ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, अलग अलग प्रोसेस में क्या क्या होता है। तो इसमें सीधा सीधा कि ग्राफ बना, PV का ग्राफ बनाते हैं हम लोग, और PV के अंदर जिसका एरिया जितना ज़्यादा उसका ग्राफ उतना बढ़िया, मतलब जिसका जितना एरिया अंडर द कर्व आया उसका उतना ज़्यादा वर्क डन आया। तो सबसे ज़्यादा आता है आइसोथर्मल का, आइसोबैरिक का आता है क्योंकि वो प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है, तो स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन आ जाता है, तो सबसे ज़्यादा उसका होता है। फिर सबसे लोएस्ट होता है आइसोकोरिक क्योंकि वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाता है, प्रेशर के प्रेशर वाले एक्सिस में, क्योंकि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है, तो सबसे कम उसमें होता है, आइसोबैरिक में सबसे ज़्यादा होता है, आइसोकोरिक में सबसे कम होता है। और आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का जो स्लोप आता है वो ज़्यादा कम आता है आइसो एडियाबैटिक से, तो एडियाबैटिक का वर्क कम आता है आइसोथर्मल से। तो अगर हम रैंकिंग करें पूरा, सबसे ज़्यादा आइसोबैरिक का, फिर आइसोथर्मल का, फिर एडियाबैटिक का और फिर आइसोकोरिक का। एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में ये डिफरेंस होता है कि आइसोथर्मल का जो स्लोप आता है वो कम आता है एज़ कम्पेयर टू एडियाबैटिक, एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा आता है तो एरिया अंडर द कर्व कम जाता है, तो इसीलिए इसका एनर्जी कम आता है, वर्क डन कम करना पड़ता है उसमें, ठीक है। पहले वर्क डन का कंपैरिजन सीक्वेंस में आइसोबैरिक, फिर आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, फिर आइसोकोरिक, डन। तो DU इज इक्वल टू NCVDT होता है और DH इज इक्वल टू NCPDT होता है, तो ये चीज़ होता है। बट ये चीज़ें हाँ हर कंडीशन में ट्रू होता है, बट ये NCP और CV जो CP और CP CP और CV जो होते हैं वो टेम्परेचर के फंक्शन पे डिपेंड करते हैं, बट बहुत बड़े टेम्परेचर के चेंज में बहुत माइन्यूट सा चेंज आता है। बट अगर क्वेश्चन में कह दे भाई कह दे, अब क्या कर सकते हैं उसमें, कि टेम्परेचर में बोल दे कि CP चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ इस रेट में, कोई इक्वेशन दे दे, तो हमको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा बात तो नहीं है, आराम से इंटीग्रेट कर देंगे CP CP NCVDT NCVDT को इंटीग्रेट कर देंगे। CV का इक्वेशन दिया होगा टेम्परेचर में, तो इंटीग्रेट करना कौन सा बहुत बड़ा बात है, आराम से इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर निकालेगा, डन। फिर आ जाता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है कि P इंटू V टू द पावर X इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो P इंटू V टू द पावर X इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो हमसे सबसे पहले क्वेश्चन में हमको X फाइंड करना रहता है कि P इंटू V टू द पावर जो X है, तो V के कौन से पावर में है, क्या क्या क्वेश्चन है। तो X जैसे निकल जाता है तो हमको वर्क डन मिल जाएगा, वर्क डन क्या होगा उस केस में, तो डेल्टा PV आएगा, डेल्टा PV, डेल्टा PV मतलब प्रेशर, फाइनल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम, तो डेल्टा PV बाय X-1, और डेल्टा PV को हम NR डेल्टा T भी लिख सकते हैं, तो उसमें भी नीचे X-1 ही आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, वर्क डन आ जाएगा ये चीज़। तो वर्क डन आ गया तो हम सबसे जो निकाल सकते, मतलब अब तो DU और DH तो हमेशा तो जनरल फॉर्म है हमारा, NCPDT NCVDT, DU NCVDT, DH NCPDT, तो यहाँ से DU और DW हम जानते हैं, तो आप सब चीज़ निकाल ही सकते हैं, DU DW और DH जानते हैं हम, सब चीज़ें निकाल सकते हैं, अब क्या दिक्कत है। अगर हमको हीट मोलर हीट कैपेसिटी पूछ दे, तो अब हम हीट जानते हैं, Q इज इक्वल टू एम 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 इंटू सी एम डी टी होता है, क्यू इज इक्वल टू मोलर हीट कैपेसिटी अगर पूछेगा तो क्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी एम इंटू डी। सी एम मतलब हीट, मोलर हीट कैपेसिटी को हम सी एम कहते हैं, तो हीट इज इक्वल टू एम सी एम डी टी होता है। और क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस डी यू होता है, और डब्ल्यू भी पता है डी यू भी पता है, तो क्यू निकल आएगा, क्यू को हम इक्वेट कर देंगे तो सी एम निकल आएगा। तो सी एम क्या निकलता है, सी एम इज इक्वल टू सी वी प्लस आर बाय वन माइनस एक्स। ये था एक टू बस, ठीक है। सी एम इज इक्वल टू सी वी प्लस आर डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स। तो नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं हम थर्मोडायनामिक्स का, जो कि है हीट इंजन, एंट्रोपी, ये सब के बारे में, ग्रिप्स में एनर्जी। तो पहला आता है हीट इंजन। हीट इंजन क्या होता है, हीट इंजन एक सोर्स होता है, सोर्स से हम हीट हीट कितना कितना सोर्स कितना क्यू वन सोर्स देता है, और हीट इंजन जो होता है वो क्यू हीट ले लेता है अपने में और क्यू टू हीट रिलीज कर देता है वही सराउंडिंग में। तो कितना वर्क डन हुआ वो हीट इंजन में, या फिर वो जो सिस्टम था उसमें कितना वर्क डन हुआ, क्यू क्यू वन माइनस क्यू टू वर्क हुआ, तो वर्क डन बाय द इंजन इज इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू टू होता है, ठीक है सब। तो नेक्स्ट टॉपिक है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन मतलब उस पर कितना वर्क हुआ और कितना हीट रिलीज हुआ था। तो वर्क डन बाय द एनर्जी, वर्क डन बाय द इंजन डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब बाय द इंजन। तो कितना हीट एब्जॉर्ब किया था, मतलब क्यू वन हीट एब्जॉर्ब किया था, बट उससे वो क्यू वन माइनस क्यू टू हीट ही वो अपने अंदर लाया, अपने अंदर मतलब रखा, और बाकी सब क्यू टू हीट जो है वो बाहर फेंक दिया। तो इसका आता है नीटा, हम इसको नीटा से ईटा से सिंबलाइज कराते हैं। तो ये होता है क्यू वन माइनस क्यू टू बाई क्यू वन, ये ऐसा सच कोई आता नहीं है एग्ज़ाम में, बट फिर भी याद रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइटल है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस या फिर रैंडमनेस या फिर मिसिंगनेस को भी हो सकता है, मतलब रैंडमनेस होता है जो चीज़, रैंडमनेस को जो चीज़ मेजर करता है उसको हम लोग एंट्रोपी बोल देते हैं। तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या होता है, एंट्रोपी हमेशा हम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डिफाइन करते हैं, मतलब जो जो एंट्रोपी इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। एंट्रोपी क्या होता है, क्यू बाई टी, चेंज चेंज इन हीट या फिर हीट, दोनों एक ही बात है हिस्ट्री केमिस्ट्री में। तो एंट्रोपी इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो एंट्रोपी जहाँ पे हम जो क्यू बाई टी लिखते हैं, तो क्यू हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस का लिखना है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए नहीं होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो अगर हम हीट लिखेंगे तो उससे ज़्यादा ही आएगा एंट्रोपी, ये है कुछ छोड़ो, बट हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लिखते हैं। तो अगर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लिखता है तो पहला पॉइंट हुआ यहाँ पे कि हम लोग क्यों रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लिखते हैं, सेकंड पॉइंट हुआ एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, थर्ड पॉइंट क्या है, इस एंट्रोपी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर हम इसमें पर मोल लगा दें या पर ग्राम लगा दें, पर ग्राम एंट्रोपी, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाता है। अब यहाँ पे एंट्रोपी जो है वो स्टेट फंक्शन है, तो इसका बस इसे लाइन याद मत रखो, इसको ये एज ए कॉन्सेप्ट यूज़ होता है हर जगह, जहाँ पे हमें दो दो चीज़ का वेरिएशन हो रहा होगा, टेम्परेचर का भी चेंज हो रहा होगा और हीट का भी चेंज हो रहा होगा। तो इस केस में ऐसे हम तो कर नहीं सकते ना कि क्यू बाई टी लगा देंगे, तो इस केस में हमें दोनों को स्टेट फंक्शन के साथ साथ चलना पड़ता है। तो एक पहले एक चीज़ को बढ़ाएंगे फिर दूसरे चीज़ को बढ़ाएंगे, तो इस चीज़ को देखेंगे हम डिटेल में, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एंट्रोपी इज़ ए स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका एग्जांपल्स होता है, कौन सा किस में पॉजिटिव एंट्रोपी आता है, किस में नेगेटिव एंट्रोपी आता है, मतलब किसका एंट्रोपी ज़्यादा आता है, किसका एंट्रोपी कम आता है, मतलब एंट्रोपी इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है दिस। तो अगर हम गैस का तो एंट्रोपी ज़्यादा होता है लिक्विड से, लिक्विड का ज़्यादा होता है सॉलिड से, तो सब जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मिक्सिंग ऑफ गैसेस, जब दो गैसेस को मिक्स करेंगे तो अब एंट्रोपी इंक्रीज़ करेगा, दो लिक्विड को मिक्स करेंगे तब भी एंट्रोपी इंक्रीज़ करेगा, तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। तो मिक्सिंग ऑफ सॉलिड भी पॉजिटिव होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। अब सॉलिड लिक्विड के साथ मिलाएंगे तो पॉजिटिव देगा, लिक्विड्स वेपर के साथ मिलाएंगे, मतलब सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तब आएगा, अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा, अगर लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करेंगे तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, डन। एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटोमिसिटी, इफ द एटोमिसिटी इज कॉन्स्टेंट देन एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट. तो एंट्रोपी जो होता है वो एटोमिसिटी पे डिपेंड करता है. एटोमिसिटी किस प्रोपोर्शनल होता है, जिसका जितना ज़्यादा एटोमिसिटी होता है उसका उतना ज़्यादा एंट्रोपी होता है. बट एटोमिसिटी भी कॉन्स्टेंट हो गया, मतलब दोनों का एटोमिसिटी भी दोनों इक्वल हो गया, तो हम मॉलिकुलर वेट पे जाते हैं, क्योंकि मॉलिकुलर वेट जिसका ज़्यादा हुआ तो उसका हम एंट्रोपी तब ज़्यादा बोल देंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस इन सॉलिड सरफेस. मतलब सॉलिड सरफेस में गैस मॉलिक्यूल जब अटैच हो जाते हैं तब रैंडमनेस कम जाता है, क्योंकि बाहर पहले घूम रहे थे मॉलिक्यूल्स, लोग अब सरफेस में आके लटक गए हैं तो रैंडमनेस उनका कम गया. तो डेल्टा एस नेगेटिव होगा. रस्टिंग ऑफ आयरन डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, क्योंकि रिएक्शंस होते हैं अंदर अंदर के. Fe पहले Fe2++2 इलेक्ट्रॉन में बदलता है, और फिर जो ऑक्सीजन बाहर का रहता है वो प्लस ऑक्सीजन एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करके O2- बनता है. तो Fe2+ और O2- कॉम्बाइन करके FeO बनाते हैं, और जो मेटल के सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो बाहर जाते हैं इस बार, क्योंकि मेटल के सरफेस के, क्योंकि Fe Fe2+ में कन्वर्ट हुआ, तो मेटल के सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन थे वो जाके बाहर कंबाइन होते थे, यानी कि ऑक्सीजन के साथ नहीं, बाहर किसी के साथ, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कोई भी ले सकता है यार, फ्री इलेक्ट्रॉन तो हैं. तो वो जैसे जैसे मेटल सरफेस के बाहर जाते हैं तो रेंडमनेस इसीलिए बढ़ जाता है, क्योंकि मेटल सरफेस से हम बाहर भेज रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को. तो डेल्टा एस पॉजिटिव होता है. रस्टिंग ऑफ आयरन में डेल्टा एस पॉजिटिव होता है. बॉइलिंग ऑफ एग में डेल्टा एस पॉजिटिव होता है. ये एक तो है, एक्सेप्शन तो नहीं है, इसका रीज़न भी होता है, क्योंकि पॉलीमर्स होते हैं, क्योंकि पॉलीमर्स लॉन्ग चेन्स होते हैं. जब हम उसको एग को बॉयल कर देते हैं, क्योंकि रॉ एग में पॉलीमर्स होते हैं तो वो बहुत लंबे लंबे चेन होते हैं, बट हम जब उसको बॉयल करते हैं तो वो लंबे लंबे जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन के चेन्स होते हैं, उसको वो पॉलीमर्स ब्रेक हो जाते हैं तो छोटे छोटे पार्ट्स में होते हैं. छोटे छोटे पार्ट्स होने से डेल्टा एस इंक्रीज कर जाता है, इसीलिए बॉयलिंग ऑफ एग का डेल्टा एस पॉजिटिव आता है. और फिर स्ट्रेच रबर और अनस्ट्रेच रबर में भी ये आता है कि स्ट्रेच रबर का रेंडम अनस्ट्रेच रबर का रेंडमनेस ज़्यादा होगा किससे, स्ट्रेच रबर से, क्योंकि स्ट्रेच रबर अनस्ट्रेच रबर में वो लोग मूव कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई टेंशन नहीं है, तो वो फ्रीली जितना भी मूव करते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं. बट हम उसको स्ट्रेच कर देंगे तो वो मॉलिक्यूल पे एक टेंशन एक्ट करेगा, तो उसका वाइब्रेशन जो होगा अंडर मॉलिक्यूल्स का वो बहुत कम होगा. तो अनस्ट्रेच रबर का रेंडमनेस ज़्यादा होगा किससे, स्ट्रेच रबर से. ठीक है, डन. फिर यूनिट ऑफ एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होगा, क्यू बैट की होता है तो जूल पर केल्विन. ठीक है, क्यू क्यू क्या होता है, हीट. तो कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ इन डिफरेंट प्रोसेसेस. रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में जीरो होता है डेल्टा एस, क्योंकि क्यू डेल्टा क्यू जीरो होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस बोल रहे हैं तो डेल्टा एस जीरो होता है. साइक्लिक प्रोसेस में, ऐसे ये स्टेट फंक्शन है तो साइक्लिक प्रोसेस में भी इसका स्टेट फंक्शन, इसका डेल्टा एस जीरो होता है. रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में इसका क्या होता है, पहले हम डेल्टा एस उसकी याद रखना है, कोई डेरिवेशन नहीं चाहिए. डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 n r log v final वाई वी इनिशियल. जो डेल्टा डेल्टा मतलब वर्क हम निकाल रहे थे ना आइसोथर्मल प्रोसेस में, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में, वो क्या आ रहा था, 2.303 n r t log v final वाई v initial आ रहा था. तो यहाँ पे बस टी को गायब कर देना और बाकी सब एज इट इज है, 2.303 n r log v final वाई v initial. ठीक है, डन. तो नेक्स्ट, क्योंकि और ये आर टी तो नहीं है, बस यही एक ही फॉर्मूला है यहाँ पे, पी वी, क्योंकि एन आर टी होने से हम उसकी जगह पी वी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, और क्या क्या कर सकते हैं उसमें. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तो रिवर्सिबल आइसोबैरिक प्रोसेस, जहाँ पे प्रेशर हम अगर कांस्टेंट रखते हैं तो डेल्टा एस क्या होता है, एन सी पी एल एन टी टी फाइनल बाई टी इनिशियल, या फिर एल एन ने बोल के 2.303 भी कर सकते हो, मतलब 2.303 एन सी पी लॉग टी फाइनल बाई टी इनिशियल. रट लो, रटना ही पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं, रटो रटो, जिंदगी है रटना. एल एन टू एन सी पी एन सी पी 2.303 लॉग वी फाइनल नहीं टी फाइनल बाय टी इनिशियल. डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू एन सी पी 2.303 इंटू लॉग टी फाइनल बाय टी इनिशियल. ठीक है, डन. उसमें क्योंकि ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो हम टी फाइनल बाय टी इनिशियल करते हैं, उसमें आइसोथर्मल है तो वी फाइनल बाय वी इनिशियल करते हैं। ऐसा याद करना, कोई भी रिलेट करके कुछ भी रिलेट करके कुछ भी याद तो करना ही है। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में वी वी मतलब वी कांस्टेंट हो जाएगा, तो वहाँ पे ऐसे कि आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट था इसलिए हम सी पी यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे सी वी यूज़ कर लेंगे, उसमें कौन सा बड़ा बात है। तो वही होगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एन सी वी लॉग टी फाइनल बाय टी इनिशियल। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है एंट्रोपी चेंज ऑफ ए आइडियल गैसेस फॉर पी वन टी वन एंड पी टू टी टू। मतलब पहले प्रेशर भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो एज हम यह कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, तो यहाँ पे उसका काम आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर भी चेंज हो रहा है और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो पी इनिशियल कुछ है और टी इनिशियल कुछ है और पी फाइनल कुछ है और टी फाइनल कुछ है। तो यहाँ पे हम एक ही स्टेप में नहीं जाएंगे, दो स्टेप में जाएंगे। पहला स्टेप में हम क्या करेंगे कि प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे और टेम्परेचर को चेंज करेंगे, जो कि आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया एक तरफ से, क्योंकि हम प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं। तो एक तरह से प्रेशर कांस्टेंट रख के जो वर्क आया उसको फिर हम ऐड करेंगे किसके साथ, अगर फिर वहाँ से प्रेशर, फिर अब हम फाइनल टेम्परेचर तक पहुँच चुके हैं बट प्रेशर वही इनिशियल वाला है, तो फिर फाइनल टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे और प्रेशर को बदलेंगे, तो आइसोथर्मल वाला हो गया। तो आइसोथर्मल का वर्क प्लस वो, तो इस पूरे केस में क्या होगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस प्लस वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, दोनों को ऐड कर देंगे, स्टेट फंक्शन है, यही फायदा होता है स्टेट फंक्शन का। और फाइनल और इनिशियल पॉइंट में डिवाइड करें तो हम कोई भी पाथ में जाएँ तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम इसी चीज़ को वॉल्यूम में भी कर सकते हैं, मतलब वी इनिशियल टी इनिशियल है और फिर वी फाइनल है, टी फाइनल है। तो वही चीज़ को हम पहले वॉल्यूम कांस्टेंट रखकर टेम्परेचर चेंज करेंगे, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रखकर वॉल्यूम चेंज करेंगे, और एट द एंड हम लोग फाइनल स्टेज पर पहुँच जाएंगे और वर्क डन दोनों का जोड़ देंगे तो अपना आ जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, इक्विलिब्रियम और रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और ओपन वेसल होता है। यहाँ पे तीन पॉइंट हमें याद करने का ज़रूरत पड़ता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है तब ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और टेम्परेचर इस टाइम पे कांस्टेंट होता है, क्योंकि फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो कहीं टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, तो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है और इक्विलिब्रियम पे रहता है, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और हम इसको ओपन वेसल में करते हैं। तो इस केस में हम जो क्यू रिवर्सिबल होता है, क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डेल्टा एच रिवर्सिबल, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, तो क्यू को क्यू की जगह हम डेल्टा एच भी रख सकते हैं। तो पहला पहला फेज ट्रांसफॉर्मेशन आता है एंट्रोपी ऑफ फ्रीजिंग। तो एंट्रोपी ऑफ फ्रीजिंग में क्या होता है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाय टी होता है, क्यू रिवर्सिबल बाय टी। तो क्यू रिवर्सिबल की जगह पे हम इस बार डेल्टा एच लगा सकते हैं आराम से, क्योंकि हमने पहला डिस्कस कर चुका है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है, क्योंकि ओपन वेसल है तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो वो सही है। ठीक है, तो क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डेल्टा एच, तो एंट्रोपी ऑफ फ्रीजिंग बोलने से डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्रीजिंग बाय टी फ्रीजिंग। टी फ्रीजिंग मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट, और डेल्टा एच फ्रीजिंग चेंज इन एंथैल्पी एट ऑफ फ्रीजिंग डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो इन केस ऑफ सॉलिड और लिक्विड में, सॉलिड सॉलिड से जब लिक्विड बन रहा होगा तो डेल्टा एस होता है चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न डिवाइडेड बाय मेल्टिंग पॉइंट। उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं लगाना है यहाँ पे, 273 केल्विन लगाना है, और डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय डेल्टा टी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न डिवाइडेड बाय मेल्टिंग पॉइंट। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन में क्या होता है कि लिक्विड से गैस बनता है, तो यहाँ पे बस डेल्टा एच की जगह डेल्टा फ्यूज़न की जगह वेपोराइजेशन आ जाएगा और कोई चेंज नहीं आएगा। डेल्टा एच इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, टेम्परेचर की जगह बॉइलिंग पॉइंट, एज इट इज़, कोई टेंशन नहीं है इसमें। तो एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन कैसे होगा, अब सॉलिड से डायरेक्ट वो वेपर जा रहा है, तो सॉलिड से वेपर तो हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं है, बट हम उसको ऐसे कर सकते हैं कि सॉलिड से पहले लिक्विड गया और फिर लिक्विड से वेपर गया, क्योंकि चेंज इन मतलब जो एंट्रोपी है वो तो स्टेट फंक्शन है, तो इसलिए स्टेट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है कि हर क्वेश्चन में यूज़ होता है, टफ क्वेश्चन में यूज़ होता है, आराम से बढ़िया से लगा देंगे हम।
तो पहले सॉलिड से वेपर हमको बनाना है, तो अगर हम सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं फिर लिक्विड से वेपर बनाते हैं तो अभी एंट्रोपी चेंज नहीं आएगा। तो जब सॉलिड से लिक्विड बनाएंगे तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूज़न आएगा, जब लिक्विड से वेपर बनाएंगे तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूज़न है, जब फ्यूज़न आ जाएगा मतलब वेपोराइजेशन आ जाएगा। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न डिवाइड बाय मेल्टिंग पॉइंट प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बाय बॉइलिंग पॉइंट। ये हो जाएगा अपने से, कोई दिक्कत नहीं है। और यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज ही होता है, तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा पॉजिटिव होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेट फंक्शन, मतलब जिसमें स्टेट फंक्शन दिख जाए भाई ओपी है, फिर वहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं और बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशन भी बन जाते हैं अपने से, है ना। तो गिब्स फ्री एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है पहला पॉइंट। ये क्या किस लिए, क्या क्या चीज़ क्या है ये, इसलिए डिफाइन किया गया कि स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन, हम स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन कर पाते हैं बेसिकली कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कौन सा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो डेल्टा जी को हम ऐसा डिफाइन किए कि H - T डेल्टा एस, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी माइनस टी इंटू चेंज इन एंट्रोपी। तो H - T डेल्टा एस, याद रखना ओपी, DH - T डेल्टा एस, DG इज इक्वल टू DH - T डेल्टा एस, रट लो रट लो रट लो भाई साहब रट लो। और यहाँ पे हमेशा हम हर चीज़ का सिस्टम के बारे में लिखेंगे, सराउंडिंग का अब हमको कोई लेना देना नहीं है, अपन हम अपने बस पे ध्यान रखेंगे, बस सिस्टम 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 सारे चीज़ का, एंट्रोपी का, गिब्स फ्री एनर्जी का भी सिस्टम आएगा, एंथैल्पी का भी सिस्टम का एंथैल्पी, और चेंज इन एंट्रोपी भी सिस्टम का चेंज इन एंट्रोपी। तो शुरू करते हैं स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, हम कैसे डिसाइड करेंगे स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस कहते हैं, और डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। ये इतना याद रखो, बहुत है आपको, इतनी चाहिए होता है इसमें, ठीक है। तो और अगर डेल्टा जी जीरो हो गया तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, पॉजिटिव हो गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और नेगेटिव हो गया तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, एज सिंपल एज इट इज़। तो अब हमको बोल रहा है कि कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनियसिटी क्या होगा, कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी मतलब डेल्टा जी नेगेटिव लाना है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डी डेल्टा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, अगर ये टोटल वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तब हम डेल्टा जी नेगेटिव कह सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ मतलब यही इक्वेशन से ही निकालना, बेकार में इतना सारा चीज़ याद करने फंस जाएंगे हम। तो डेल्टा एच अगर नेगेटिव, इसे फिर ही बता दे रहा हूँ कि डेल्टा एच अगर नेगेटिव हुआ और डेल्टा एस भी पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव, तो इस केस में हमेशा हमेशा डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। इक्वेशन से डाल के देख लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इक्वेशन से ही डालना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसको कोई रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो टाइम पास नहीं करते इस पर। तो इसके बाद आता है कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि कंडीशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो डेल्टा जी को हम नेगेटिव डाल देते हैं, तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव, डेल्टा जी को हम पहले से ही स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर का डिपेंडेंसी कंडीशन देख रहे हैं हम, तो डेल्टा जी को हम नेगेटिव डाल देंगे, और जो जो इनइक्वेलिटीज बैठेगा हमको कि जो जो कि आता है टेम्परेचर डेल्टा एच बाय डेल्टा एस से बड़ा आता है, ये इसको रट ले सकते हो यार, इसको तो रटना पड़ेगा थोड़ा सा, ये जल्दी करना है ना अपने को क्वेश्चन। तो टेम्परेचर हमेशा बड़ा होता है डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस से, चेंज इन एंथैल्पी डिवाइड बाय चेंज इन एंट्रोपी से बड़ा होना चाहिए टेम्परेचर, तभी ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाएगा, डन। तो अगर हम इसके इक्वल हो जाए तो क्या होगा, तो अगर टेम्परेचर टी डेल्टा डेल्टा एस बाय डेल्टा डेल्टा एच बाय डेल्टा एस के इक्वल हो जाएगा तो वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कहलाएगा। तो उतना टेम्परेचर को हम डिफाइन कर दिए कि ये टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम है, मतलब इस टेम्परेचर पे एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाएगा, अगर उस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से कम 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 टेम्परेचर हुआ तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहेगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो टी इक्विलिब्रियम क्या होता है, डेल्टा एच ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, ठीक है, डन। तो इसके बाद आता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शंस। तो इसमें क्या होता है कि डेल्टा जी नॉट को हम स्टैंडर्ड गिब्स ऑफ फ्री ऑफ रिएक्शंस कहते हैं, डी जी नॉट को. तो एट इक्विलिब्रियम हम मान के चलते हैं, मतलब द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर ए स्टेबल नेचुरल फॉर्म ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल इज सपोज टू बी जीरो. मतलब जो चीज़ जैसा एज इट इज़ नेचर में ऐसा प्रोवाइड जैसा जैसा रहता है, मतलब H2 गैस के फॉर्म में रहता है, मतलब एच टू गैस के फॉर्म में रहता है नेचर में, तो उसका डेल्टा जी नॉट हम लोग जीरो किए, डेल्टा जी जीरो नहीं किए, डेल्टा जी नॉट जीरो किए हैं उस चीज़ का. जैसे जिंक जिंक का जिंक जेड एन सॉलिड फॉर्म में रहता है, अगर ये इसको हम लोग लिक्विड फॉर्म में कर जेड एन अगर लिक्विड फॉर्म में कर दें तो इसका डेल्टा जी नॉट हम तब जीरो नहीं कहेंगे. बट अगर अगर उसका कोई भी फॉर्म नेचुरल फॉर्म में है तो उसका जी नॉट हम डेल्टा जी नॉट जीरो मान के चलेंगे. तो जेड एन सॉलिड नेचुरल फॉर्म में होता है तो उसका डेल्टा जी नॉट जीरो, जेड एन लिक्विड जीरो नहीं होगा डेल्टा जी नॉट. तो अगर ब्रोमीन ब्रोमीन का हम गैस बोल दें, ब्रोमीन गैस, तो ब्रोमीन तो लिक्विड फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है तो इसका भी डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होगा. ब्रोमीन अगर लिक्विड बोलेगा तो हम डेल्टा जी नॉट जीरो मान देंगे. अब अगर उसके कार्बाइड के अगर आइसोटोप्स हैं, जैसे कार्बन का ही ग्राफाइट, ग्राफाइट और डायमंड, डायमंड में सबसे ज़्यादा ग्राफाइट और डायमंड सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? ग्राफाइट. मतलब उसके जितने भी आइसोटोप्स हैं कार्बन के, तो उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्टेबल है ग्राफाइट. तो उसका उसका डेल्टा जी नॉट हम जीरो मानेंगे. डायमंड का अगर ग्राफाइट का बोलेगा तो हम नहीं मानेंगे भाई, अपन जीरो नहीं बोलते. ऐसे वैसे सल्फर का भी बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कि सल्फर का रोम्बिक और मोनोक्लिनिक. तो रोम्बिक हम मानते हैं कि रोम्बिक स्टेबल है भाई, तो उसका डेल्टा जी नॉट हम जीरो मानते हैं. मोनोक्लिनिक का हम जीरो नहीं मानते हैं. माई लाइफ माई रूल, कोई भी कर सकते हैं. तो इसका सिंपल सा वही होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी, मतलब डेल्टा डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट. क्या होता है क्या पता, सब सब सबसे स्टैंडर्ड ले जाएंगे तो स्टैंडर्ड हो जाएगा सब चीज़. तो पॉइंट आता है अब रिएक्शन का, पता है कि रिएक्शन का क्या होता है, रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट कैसे निकालें हम. तो रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या, एक ही चीज़ है. तो रिएक्शन पहली बात बैलेंस होना चाहिए, ये सबसे मेजर कंडीशन है. तो रिएक्शन बैलेंस करने के बाद प्रोडक्ट में जो डेल्टा जी नॉट है माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा. तो प्रोडक्ट का प्रोडक्ट में जो फॉर्म हो रहा होगा उसका डेल्टा जी नॉट लिखेंगे, सम ऑफ डेल्टा जी नॉट, मतलब उसका जितना जितना भी जो जो मोल फॉर्म हो रहा होगा, मतलब अगर एन टू, मतलब जितना भी उसका मोल इन टू डेल्टा जी नॉट ऑफ दैट सब्सटेंस, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिर प्रोडक्ट का करके, फिर माइनस कर देंगे रिएक्टेंट का. तो एज सिंपल एज इट इज़, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा थर्मोडायनामिक्स, इसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री आएगा, देखते हैं कब आएगा.